आगे आयत नंबर 14 से ऑनवर्ड, कातिलूहुम युअज्जिबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, इनसे जंग करो, अल्लाह इन्हें तुम्हारे हाथों अजाब देगा, इन्हें जलील और रुसवा करेगा, तुम्हें इन पर मदद देगा और मुसलमानों के कलेजे ठंडे करेगा और इनके दिल का गम और गुस्सा दूर करेगा, और वो जिसकी तरफ चाहता है रहमत से तवज्जो फरमाता है, अल्लाह तला जानता बूझता हिकमत वाला है। तो क्या पता चला कि मोमिन का दिल काफिर के कुफर को कटता देख कर खुश होता है और साथ ही साथ उसका गजब दूर होता है। अब आगे एक आजमाइश, हम हसीब तो मान तो तरकू, क्या तुम समझे बैठे हो कि तुम छोड़ दिए जाओगे, हालांकि अब तक अल्लाह ने तुम में से इन्हें मुमताज नहीं किया जो मुजाहिद हैं और जिन्होंने अल्लाह के और इसके रसूल के और मोमिनों के सिवा किसी को दिली दोस्त नहीं बनाया, अल्लाह खूब खबरदार है जो तुम कर रहे हो। लायक नहीं कि मुशरिक अल्लाह ताला की मस्जिदों को आबाद करे, हालांकि वो अपने कुफर के आप ही गवाह हैं, इनके आमाल गारत और इकारत है और वह दायमी तौर पर जहन्नमी है। तो फिर कौन है अल्लाह की मस्जिदों को बात करने वाले? इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वअक़ामस्सलात वअतज़्ज़का, अल्लाह की मस्जिदों की रौनक और आबादी तो इनके हिस्से में है जो अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हों, नमाजों के पाबंद हों, ज़कात देते हों, अल्लाह के सिवा किसी से ना डरते हों, तवक्को है कि यही लोग यकीनन हिदायत याफ्ता हैं। ये है जी मस्जिदों के आबादकारों के वसफ। पीछे कुफार को चूंके खाना काबा की तवल्लियत से फारिग किया जा रहा था, कहा कि तुम खुद तो मुशरिक हो और तुम खाना काबा की खिदमत करके कोई अपने आप को जन्नती समझ रहे हो तो गलत करते हो। आयत नंबर 18 में से अपने लिए पॉइंट्स निकाल लीजिए, मस्जिदों के टेक केयरर, मस्जिदों के नमाजी, मस्जिदों की देखभाल करने वाले लोगों की पहली शर्त क्या है कि उनका अकीदा ठीक हो, मना मना बिल्ला अकीदा ठीक हो। नंबर दो, वल यौमिल आखिर, आखिरत के बारे में दुरुस्त तरीका हो, तभी तो वो मस्जिद सही चलेगी, तभी तो आपस में झगड़े नहीं होंगे, तभी तो बाद में शूरा में झगड़े, इमाम का मसला, मैनेजमेंट और वलां का झगड़ा, ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं, और एक मस्जिद दो में और दो चार में कट कट के सारे शहर को ना परेशान करें। तीसरी बात है कि जो केयर टेकर है वो खुद भी तो नमाजें पढ़ें। जी हाजी साहब मस्जिद तो बना दी तो आपका बेटा किधर, वो नहीं आता, कई चंदा देने वाले खुद नमाजी भी नहीं होते, ये उनका और अल्लाह का मामला है। लेकिन पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जिसका पैसा आपकी मस्जिद में लगे वो खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो, हिस्सा डालना नहीं है हिस्सा बनना है, वातस ज़कात, फिर ज़कात भी दें। पता चला नफिल सदके दे रहे हैं, बड़े दिखावे की चीज़ें हो रही हैं और अपनी ज़कात ही नहीं पूरी दी हुई। और जो सबसे बड़ी खूबी मस्जिदों के केयर टेकर्स में होनी चाहिए, वलम यख्शा इल्लल्लाह, मस्जिद के नाम पर किसी का ठप्पा ना हो, किसी का अपर हैंड ना हो कि चूंकि ये जी बहुत डोनेशन देते हैं अब इनकी बात मान लें। हाँ फसा उलाई कहीं यकून मिनल मुख्तदिन, फिर उम्मीद रखो कि इनको हिदायत मिलेगी। ये है वो खूबसूरत आयत जिसके ऊपर आज तहदीस नेमत के तौर पे दिल के अंदर इतने शुक्र के जज्बे रखते हुए एक फ्लायर आपके साथ शेयर हो रहा है, और वो क्या है कि नूरुल कुरान इंस्टीट्यूट की तारीख की पहली मस्जिद, साफ सुथरी सादी मस्जिद, कोई पंपी ग्लैमरी मस्जिद नहीं है, ना मिंबर है ना मेहराब है, अभी सिर्फ एक हॉल को तरावी के काबिल करके इंशाल्लाह ताला तरावी के लिए खोला जा रहा है। पहले तो अल्लाह का शुक्र, मैं सजदा शुक्र भी करूँगी यहाँ कि अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में ये वक्त मुझे दिखाया कि आज ये अनाउंसमेंट हुआ। तकरीबन 1.5 साल से ये मस्जिद बन रही थी और हम इसका ख्वाब देख रहे थे कि इस मस्जिद में तरावी होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लायर आपके साथ है। जोहराबाद में रहने वाले इस फ्लायर को जिसके साथ मर्जी शेयर करें, जोहराबाद के कुर्बो जवार वाले भी आ जाएं, क्योंकि इब्तदा वाले लोग तो फिर इब्तदा वाले ही होते हैं। इस मस्जिद में ना सिर्फ यह कि मर्दों के लिए बल्कि ख़वातीन के लिए भी तरावी का इंतज़ाम होगा, 1 रमज़ान से 30 रमज़ान तक टाइमिंग भी लिखे हैं, और अपनी सी कोशिश के मुताबिक आपको पूरी सर्विस देंगे। वो कि अभी पूरी मस्जिद तैयार नहीं है, लेकिन इसे एक रूम को किसी न किसी तरह से आपके लिए तैयार किया गया है। हर रोज़ एक पारे की मुख्तसर तफसीर हुआ करेगी, इसी तरह लैलतुल कदर की रातें जब शुरू होंगी तो उनमें दुआओं का अहतमाम होगा, और बाकी चीज़ें तकमील 29th को है। अल्लाह ताला हम सबको अपने शुक्रगुजार बंदों में बना ले। ये एक हल्की सी झलक आप लोग भी देख लीजिए किस तरह से ये मस्जिद बन रही है। ये वो जानते हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, या वो जानते हैं जो काम करवा रहे हैं। अल्लाह ताला हर एक की नेकी को कबूल करे और इस जगह को छोटा बना दे आने वाले लोगों की निस्बत। बीच में कुछ फ्लोर, ऊपर का नीचे का भी सब ऐसे ही चल रहा है, सिर्फ एक फ्लोर है जिसको फोकस करके नमाजियों के लिए तैयार किया है ताकि तरावी हो जाए। और जिन लोगों ने इसमें मोहब्बत में खर्च किया है, याद रखिए कि इसके लिए कोई डोनेशन की कॉल नहीं है, ना कभी की ना कभी करेंगे, लेकिन कुछ प्यारे हैं जो अपने प्यार के इजहार में जबरदस्ती हिस्सा डालते हैं कि हमारा हिस्सा डले, तो उनकी आंखों की ठंडक के लिए ये सब कुछ शेयर किया जा रहा है। पूरी जिम्मेदारी के साथ इसको बनाया जा रहा है। अल्लाह ताला हमारी इन टूटी फूटी कोशिशों को कबूल फरमाए। थोड़ी सी चीज़ें इन मैसेज में थी जिनसे आप शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ अगली आयत पढ़ूंगी इस शऊर के साथ कि सिर्फ मस्जिद नहीं, मस्जिद की आबादकारी भी अहम है। अभी ऊपर जो खूबियाँ पड़ी हैं वो भी अंदर लाकर इसके इंतजाम को चलाना है, और दूसरी बात है कि इसकी जवाबदेही भी सब में हो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अजाल तुम सिकायतल हाजी व इमारतल मस्जिदिल हराम, क्या तुमने हाजियों को पानी पिला देना और मस्जिद हराम की खिदमत करना इसके बराबर कर दिया है जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए और अल्लाह की राह में जिहाद किया? ये अल्लाह ताला के नज़दीक बराबर के नहीं, और अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत नहीं देता। अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम, जो लोग ईमान लाए और हिजरत की, अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जानों से जिहाद किया, वो अल्लाह के यहाँ बड़े मर्तबे वाले हैं और यही लोग मुराद पाने वाले हैं। इन्हें इनका रब खुशखबरी देता है अपनी रहमत की और रजामंदी की, और जन्नतों की इनके लिए वहाँ दवामी यानी बाकी रहने वाली नेमत है। वहाँ ये हमेशा रहने वाले हैं, अल्लाह के पास यकीनन बहुत बड़े सवाब हैं। क्या पता चला कि अल्लाह नुक्ता नवाज है। अभी मस्जिद की बात हुई और यहाँ ये आयत आ गई जान माल वक्त लगाने की, तो मेरी आंखों के सामने वो बारीक सी बालियाँ आ गईं। पता नहीं वो कहाँ रखी होंगी तस्वीरें। जब ये मस्जिद का प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो अगले ही दिन स्टूडेंट्स में से कोई एक खातून वो बालियाँ लेकर आई। शायद चंद माशे भी उसका वजन ना हो कि नहीं, मैंने ज़बरदस्ती सर डलवाना, ये मेरी बच्ची के पैदा होने पर मुझे मिली थी। इस तरह की मोहब्बत वाली चीज़ों को अल्लाह ज़ाया नहीं करता। ज़्यादा कोई डाल रहा है कि कम, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, क्योंकि इस बारे में सीख रहे हैं हेड काउंट नहीं होना। कोई ज़्यादा में से ज़्यादा देता है तो उसकी कदर है, कोई कम में से कम देता है तो उसकी कदर है, और कोई कम में से ज़्यादा देता है तो उसकी कदर है, और कोई ज़्यादा में से और ज़्यादा देता है तो उसकी कदर है। असल बात यह है काबिलियत नहीं कबूलियत। इसीलिए मल्लम यशकुरिन्ना सलम यशकुरिल्ला, इस हदीस पे अमल करते हुए उन सब साथियों के लिए दिल की गहराइयों से दुआ करूंगी कि उनका दिया अल्लाह कबूल भी करे और उनके लिए ठंडक का जरिया हो, और एक एक पैनी पैसे की हिफाजत की जाए और कोई पैसा फालतू बेकार चीज़ों में ज़ाया ना किया जाए। और जो अल्लाह ने खुशखबरियाँ दी हैं, युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमत मिन्हु व रिज़वान, ये सब कुछ आप सबको अता हो, और वो जन्नतें जिसकी नेमतें बाकी रहने वाली हैं अल्लाह ताला वो भी आपको अता फरमाए और अजरे अजीम अता फरमाए। अगली आयत जो एक क्राइटीरियन है इस सूरत का, एक बहुत प्यारा के लिए पिलर ये भी, और इससे अगली भी चंद आयतों के बाद एक आयत आएगी, तो इन सारों को इकट्ठा लीजिए। या अय्युहल लजीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया, ईमान वालों अपने पापों को और अपने भाइयों को दोस्त ना बनाओ अगर वो कुफर को ईमान से ज्यादा अजीज रखें। तुम में से जो भी इनसे मोहब्बत रखेगा वो पूरा गुनाहगार जालिम है। जी, कुफर और इस्लाम की जंग में नो कॉम्प्रोमाइज, नो सॉफ्टनेस। सहाबा की कुर्बानियों को और उनके जिहाद को तो हम पहुंच ही नहीं सकते। क्यों? क्या आज अगर आप मैदान जंग में भी जाते हैं ना, तो आपके सामने काफिर होता है जिसको आप जानते भी नहीं है। सहाबा के मुकाबले पे उनके बाप और भाई होते थे। जी, इसीलिए अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, कुल इन काना आबाउकुम व बनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम आप कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवी और तुम्हारे कुंबे कबीले और तुम्हारे कमाए हुए माल और वो तिजारत जिसकी कमी से तुम डरते हो और वो हवेलियां जिन्हें तुम पसंद करते हो, अगर ये तुम्हें अल्लाह से और इसके रसूल से और इसकी राह के जिहाद से भी ज्यादा अजीज हैं, तो तुम इंतजार करो कि अल्लाह तआला अपना अजाब ले आए, और अल्लाह तआला फासिकों को हिदायत नहीं देता। जी, नंगी तलवार की तरह ये आयत इस सूरत में मौजूद है। याद रखिए, नफरतों का जिहाद आसान होता है। जिसे आपको नफरत है उसको तो बंदा और जोर से मारता है, लेकिन यहाँ मोहब्बतों का इम्तिहान है। 5 रिश्ते और 3 माल से मुतल्लिक चीजें, कुछ मर्दों की कमजोरियां, कुछ औरतों की कमजोरियां। अल्लाह तआला ने इसको सामने लाकर बता दिया। अब बोलो, क्या रदी अल्लाह अन्हु वरदू अन का जो टाइटल सहाबा को मिला वो ठीक था? ये गाजी, ये तेरे पुरसरार बंदे, ये क्या बताता है कि सहाबा ऐसे लगता है मिट्टी के माधू थे? अल्लाह के नबी बंदा एतमाद लीडरशिप के अंदर रहते हुए हर वो काम किया जिस पे अल्लाह के नबी ने कहा करो, और आगे सूरह फत में आप सुनेंगे कि हर उस चीज से रुक गए जिसे नबी ने रोका। तो क्या पता चला? पहली दुआ कीजिए, अल्लाह ताला दीन के कामों को करने वाले इदारों में ऐसी ही सिफात वाले लोग भेज दे जो जक़ात लेने वाले नहीं जक़ात देने वाले हों, अपने घरों को खोले, इलीट तक ये दीन पहुंचे। हमने दीन के साथ जो गुर्बत रखी, तो आप देखिए गुर्बत में क्या है, अल्लाह कहते हैं जक़ात देते हैं, तो जक़ात कौन देता है? जो नसाब को पहुंचता है। तो इस्लाम पैसे वालों को गिल्ट नहीं देता कि तुम चूंकि अमीर हो इसलिए आखिर में तुम गरीब होगे। और सबसे बड़ा आज के दौर का जिहाद, मोहब्बतों का जिहाद। खानदान एक तरफ, कुरान कुछ और कह रहा है। बेटा सगा अपनी शादी में गलत रस्म कर रहा है, माँ की इम्तिहान है, बाप का इम्तिहान है, शोहर धमकी देता है, बीवी जिहाद जिहाद जिहाद। ये चीजें जो कर लेता है ना, उसके लिए फिर तलवार दुश्मन के गले पे चलाना क्या मुश्किल है? जो दोस्त के, जो प्यारे के सीने पे खड़ा हो जाए, उसको दुश्मन के सीने पे खड़ा होना क्या मुश्किल है? यहाँ जुमला लिखिए, अल्लाह ने इस काबा के घर की तारीख में एक बाप के हाथ में छुरी पकड़ा के बेटे की गर्दन पे रखवा दी थी। ये अलग बात है कि अल्लाह ने बेटे को भी बचा लिया और बाल का भीखा ना हुआ। इब्राहिम और इस्माइल की सूरत में यही मोहब्बतों का इम्तिहान था। अल्लाह किसी और की गर्दन पे छुरी चलवाता, एक बकरा आ जाता, दुम्बा आ जाता है, कहते इब्राहिम जिबा कर दो, बड़ा आसान है। बेटे की गर्दन पे छुरी चलाएंगे तो दीन मिलेगा। हम अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। हमारे घर, हमारे बच्चे, हमारी शादियां, हमारी तारीफें, ये वो ही नहीं खत्म होती, सारी जिंदगी इनमें लगे रहते हैं, और दीन सुतेले बच्चे की तरह पीछे पड़ा रहता है। हालांकि ये जिस्म मिट्टी में जाएगा, ये डिग्रियां लेकर कोई दफन नहीं हुआ, इस घर को लेकर कोई कब्र में नहीं गया, इस गाड़ी को किसी ने आपके साथ दफन नहीं करना, इस सेल फोन को किसी ने आपके सीने पे रख के नहीं दफनाना, किसके बगैर ये जीती नहीं थी। अल्लाह से बढ़कर जब इन चीजों से मोहब्बत करेंगे, यही जुर्म है। मोहब्बत तो दी अल्लाह ने खुद, जुशीन अलिन्ना से खुबु शाहबाद सूरह आले इमरान में पढ़कर आए हैं। और जो अल्लाह के दीन को पीछे डालकर, अल्लाह के दीन के तकाजों को पीछे डालकर इनमें खो जाएगा ना, तो लिख लीजिए अल्लाह एक इंतकाम लेगा। इन्हीं मोहब्बतों को आपकी आंखों के आंसू बना देगा, इन्हीं औलादों के गमों से आपको चूर कर देगा, इन्हीं घरों और इन्हीं बड़ी बड़ी चीजों के अंदर आपकी जिंदगी रहेगी। हर वक्त आप स्ट्रेस में होंगे, हर वक्त आप परेशान होंगे। वो कहते हैं ना, जब बुतों ने दुख दिया तो खुदा याद आया। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें दीन के नाम पर कटने मरने वाला बना दे। साहबा की जिंदगी तो ऐसे वाकयात से भरी पड़ी थी। कसरत और किल्लत की चूंकि बात हो रही है इस बारे में, तो आइए देखिए आयत 25 में एक जोम दिलों में आ गया कि आज तो हम बहुत कुछ कर लेंगे। अल्लाह ने वहीं एक झटका दिया, गजवे हुनैन का तस्करा। लकद नसरकुमुल्लाहु फी मवातिना कसीरा व यौम हुनैन। यकीनन अल्लाह ताला ने बहुत से मैदानों में तुम्हें फतह दी है, और हुनैन की लड़ाई वाले दिन भी, जबकि तुम्हें अपनी कसरत पर नाज हो गया था, लेकिन इसने तुम्हें कोई फायदा ना दिया, बल्कि जमीन बावजूद अपनी कुशादगी के तुम पर तंग हो गई, फिर तुम पीठ फेर कर मुड़ गए। सुम्मानजल्लाहु सकीना, फिर अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से तस्कीन अपने नबी पर और मोमिनों पर उतारी, और अपने वो लश्कर भेजे जिन्हें तुम देख नहीं रहे थे, और काफिरों को पूरी सजा दी। इन कुफार का यही बदला था। क्या पता चला, जो अल्लाह के रास्ते में निकल पड़ते हैं अल्लाह उनको काफी हो जाता है। आइए जरा गौर व फिक्र करते हैं और अमल के नुक्ते। नमाजों से पहले या बाद में अल्लाह का जिक्र करते हुए मस्जिद में ठहरना मस्जिद को आबाद करने की शक्ल है। देखिए थोड़ी देर नमाज पढ़ी फिर लोग चले गए तो मस्जिद तो खाली रहेगी। तो जो वहां बैठे हैं, जो वहां काम करें, जो वहां प्लान्स करें, जो जिक्र अजकार करें, वहां इतिकाफ करें, वहां रहकर दिन रात काम करते रहे, मैनेजमेंट को देखें, वो हैं असल में बात करने वाले। अल्लाह हमारे दिल मस्जिदों में लगा दे, अल्लाह से दूर करने वाली हर चीज की मोहब्बत को दिल से निकाल दे। दुआ में एक बड़ी प्यारी दुआ है अल्लाह के नबी की कि अल्लाह इस दुनिया की मेरी वो चीज़ जो तू ले गया उसको मेरे अपने कुर्ब का जरिया बना दे। इसी तरह एक और दुआ आती है, अल्लाहुम्मा जअल मा रज़क़तनी मिन नियमिन ज़ाहिरतिन व बातिनतिन सबबन लिरिदाक वल कुर्बि मिनका फला तुशगिलनी बिहा अन मोहब्बतिका। ए अल्लाह, जो तूने मुझको ज़ाहरी नेमतें भी दी हैं और बातनी भी दी हैं, उनको सबब बना दे तेरी रज़ा को पाने का और तेरे कुर्ब का, और मुझे उनमें मशगूल ना कर देना कि तेरी मोहब्बत से ज़्यादा उसमें मशगूल हो जाऊँ। वही बच्चे और माली मिसाल के माँ खिलौना ले दे तो बच्चा और भी माँ की बात ना सुने, हमारा हाल तो उस बच्चे का हो गया। तो कुरान से रहनुमाई, दीन के दुश्मनों को रासदार और बाएतमाद दोस्त बनाने से बचना। अगर बंदा सच्चा और पक्का मवाहिद ना हो तो उसको उसके नेक अमाल फ़ायदा नहीं देंगे। दीनी रिश्ता खूनी रिश्ते से ज़्यादा अजमत और शर्फ वाला है, इसकी अहमियत को समझिए। कब्र वालों से दुआएं मांगने वाले, इनकी इबादत करने वाले इन मुशरिकीन की तरह है जो अपने बनाए हुए माबूदों से आस और उम्मीद लगाते हैं। गौर व फिक्र की बात है ये। मस्जिदों को ईमान वाले ही ये बात करते हैं और अहले मस्जिद कहलाए जाने के हकदार हैं। हिजरत और जिहाद के मुकाबले में खानदान और माल और दौलत की हद से ज्यादा मोहब्बत इंतहाई खतरनाक है। दुश्मनों पर फतह और कामयाबी तादाद और जंगी साजो सामान से नहीं मिलती, बल्कि अल्लाह ताला की मदद और फैसले के जरिए हासिल होती है। इसको हासिल करना है। और गज़वे हुनैन के किस्से से एक बात याद रखिए कि अपनी फतह का यकीन होना अपने असबाब पे नज़र लगाकर ये दुरुस्त नहीं है। असल बात यह है कि अपने आप को छोटा बनाकर रखिए। आगे तौबा का कुछ तस्करा मजीद, दोबारा लफ्ज़ तौबा नोट कर लीजिएगा, आयत 27। सुम्मा यतूबुल्लाहु मिन बादी ज़ालिका अला मन यशा, फिर इसके बाद भी जिस पर चाहे अल्लाह अपनी रहमत की तवज्जो फरमाएगा। अल्लाह ही बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला है। या अय्युल्लज़ीना आमनु इन्नमल मुशरिकून नजस, ऐ ईमान वालो बेशक मुशरिक बिल्कुल ही नापाक हैं। वो इस साल के बाद मस्जिद हराम के पास भी ना पटकने पाए। अगर तुम्हें मुफलसी का खौफ है तो अल्लाह तुम्हें दौलतमंद कर देगा अपने फजल से अगर चाहे, अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। इस आयत पे बहुत प्यार आता है मुझे, जब हरम में आते हैं और ख़ास तौर पे जद्दा से मक्का के रास्ते में आप उस जगह से गुजरते हैं जिसके आगे नॉन मुस्लिम को जाने की इजाज़त नहीं, तो मैं हिकमत पे गौर करती हूँ। आज भी आप देखिए इतने लोग करीब होते हैं, औरतें मर्द, लेकिन कभी कोई वाकया नहीं देखा आपने, कोई बेहयाई नहीं देखी, नजरें भी झुकी हुई। बस लोग पूछते हैं ये क्यों है ऐसा, औरत और मर्द इधर इख्तलात में क्यों है, ताकि सीखो कैसे जीना है दुनिया में। अगर कभी ऐसा मामला हो जाए तो मर्दों को अपनी नजरों को झुकाना है और औरतों को अपनी इज्जतों की हिफाजत करनी है। अब इसके बाद कातिलुल्लज़ीन ला यूमिनून बिल्लाह, आयत नंबर 29। इन लोगों से लड़ो जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं लाते, जो अल्लाह और इसके रसूल की हराम करदा शय को हराम नहीं जानते, न दीन हक को कबूल करते हैं इन लोगों में से जिन्हें किताब दी गई है, यहाँ तक कि वो जलील व ख्वार होकर अपने हाथ से जिजिया अदा करें। क्या पता चला कि अल्लाह का फैसला अटल है। आगे से कुछ बातें नसारा नहीं बल्कि यहूद से मुतल्लिक, और फिर उसी के अंदर दोनों का एक कॉमन क्रीट। वकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वकालत नसारा अल-मसीह इब्नुल्लाह, यहूद कहते हैं उज़ैर अल्लाह का बेटा है और नसरानी कहते हैं कि मसीह अल्लाह का बेटा है। ये कौल सिर्फ इनके मुंह की बात है, अगले मुनकिरों की बात की ये भी नकल करने लगे। अल्लाह इन्हें गारत करे वो कैसे पलटाए जाते हैं। इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने आलिम और दरवेशों को रब बना लिया है, और मरियम के बेटे मसीह को, हालांकि इन्हें सिर्फ एक अकेले अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया गया था जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो पाक है, इनके शरीक मुकर्रर करने से अहम आयत है। इत्तखज़ु अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, शख्सियत परस्ती की जड़ इस आयत से कटती है, और हदी बिन हातिम का जिक्र आ जाता है इस आयत के साथ ही। कैसे उन्होंने अल्लाह के नबी से पूछा था कि ये तो हम रब नहीं बनाते, तो कहा क्या उनके हलाल को हलाल और हराम को हराम नहीं कहते। आज उम्मत मुस्लिमों के लिए भी इसमें अमल का नुक्ता है कि किसी की भी बात आंख बंद करके ना सुनिए। और अगर आप नए नए लोग हैं तो ये दुआ करके बैठा करें, अल्लाह मारीन अल्हक का हक का वरजुकना इतबा। वो मेरी बात भी सुन रहे हैं, अगर आप पहली दफा जानते ही नहीं है मुझे, तो ये मांग के बैठा करें कि अल्लाह अगर इनका अकीदा और अमल ठीक है, इनकी सोच ठीक है, तो हम इनकी बात सुने वरना हम ना सुने। पुराने लोगों को तो खूब अच्छी तरह पता है कि आपको यहाँ से क्या मिलता है। अगली आयत इस बारे का अमूद है और वो बहुत प्यारी आयतें हैं। यहाँ अल्लाह ने नबी से गलबा दीन का काम लेना है, लेकिन दूसरे क्या चाहते हैं? युरीदून युत्फि नूर अल्लाह बि अफवाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफिरून। वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दें। या नूर अल्लाह से मुराद इस्लाम, और अल्लाह तआला इनकारी है मगर इस बात का कि अपना नूर पूरा करेगा, गो काफिर ना खुश रहे, यानी इस्लाम गालिब होके रहेगा। क्योंकि ये है दी मकसद आमदे रसूल, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलखुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। ऊपर वाली आयत में काफिरून थे, यहाँ मुशरिकून है, इसका फर्क नोट कीजिए। इसी ने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा है कि इसे और तमाम मजहबों पर गालिब कर दे, अगरचे मुशरिक बुरा माने। खूबसूरत देखिए नुक्ता, निस पारा हो रहा है आयत 33 पे, और आयत पे अगर आप गौर कर लें तो गलबा दीन है। यह है बारे का थीम। याद रखिए अल्लाह के नबी चूंकि आखिरी नबी थे ना, तो आपके जरिए अल्लाह ने इस्लाम को गालिब करना था, और इस्लाम का मिजाज है ना गलबे वाला है। अक्सर मैं मिसाल देती हूँ कि लस्सी या छाछ के ऊपर जब मक्खन आता है और आप थोड़ी सी बर्फ डाल के उसको सख्त करते हैं ना, तो वो ऊपर रहता है, हाथ से जरा सा नीचे भी करें ना उस पेड़े को, तो फिर ऊपर आता है। तो इस्लाम छाछ नहीं है, इस्लाम बटर है, मक्खन है, क्रीम है। अल्लाह हमें इस इस्लाम की कदर की तौफीक दे दे। और ये गलबा दीन कभी दिमाग के रास्ते आएगा, कभी पेट के रास्ते आएगा, कभी तलवार के रास्ते आएगा। हर मुमकिन तरीके से इस्लाम को गालिब करो, लोगों को अच्छा खिलाओ ताकि इस्लाम की मोहब्बत आए, लोगों को इस्लाम का इल्म दो, जो नहीं मानते दुश्मन बन के आते हैं तो उनको तलवारें दिखाओ। हर मुमकिन तरीके से आपका मेरा काम क्या है, इस्लाम गालिब हो जाए और हमारा उसमें हिस्सा डल जाए। गलबा तो होगा, दुआ कीजिए अल्लाह हमारा हिस्सा डाल दे। आज मैं और आप गालिब हैं क्या, हमारा नाम है, हमें कौन क्या कहता है, हु केयर्स। हमारी बला से हमने शोहरत का अचार डालना है, हमें लोगों को लेके कोई पैसे लेने हैं गवर्नमेंट से या किसी चैनल से। आज मरेंगे कल दूसरा दिन होगा, कोई हमें नहीं जानता होगा। दुआ ये किया करें कि अल्लाह अगर इस पैगाम में सच्चाई है तो इसको आगे बढ़ा दे, इसको फैला दे। पिछले दिनों पहली दफा नूरुकरान का चैनल 1 लाख के फिगर से ऊपर गया। आज चूंकि फिगर्स की बात है तो शायद ये बात तूफान पे आ गई। ये फिगर ऊपर बढ़ता है ना तो अल्लाह की मदद भी शामिल हो जाती है, आपको पता है, प्रमोशन मिल जाती है, वो खुद ही आपके चैनल को आगे प्रमोट करते हैं। तो जाइए, और क्या चाहिए आपको इस बात पे कि 1 लाख लोग इसको सुनने लग गए और इनका पैगाम आगे जा रहा है, और सुनते तो और भी हैं, लेकिन चलिए उन्होंने इसको और सब्सक्राइब कर लिया तो फायदा होगा। कुफर का पैसा आपके इस्लाम पे लगेगा, इस सूरत में कह लें अगर आप, तो कोई बुरी बात तो नहीं है। लोग पैसे दे दे के पता नहीं क्या झूठ सच बोलकर सब्सक्राइबर्स लेते, पैसे कमाते। अल्लाह का शुक्र है नूर कुरान का कोई चैनल मोनेटाइज नहीं है, आपको कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं मिली हमारे चैनल्स में, सारा खर्चा खुद चलाया जाता है, अल्लाह की रहमत है, कोई बात नहीं है। मकसद क्या है कि लोग दीन से जुड़े। बस इस चैनल को अगर आप पसंद करते हैं तो जाइए लोगों को दीजिए, इसको बढ़ा ले। आपके किसी के कहने पे कोई एक दफा इसको सब्सक्राइब कर लेता है और आपका सदका जारिया बन जाता है। मस्जिदों में जाते, तरावी में जाते, छोटे छोटे कार्ड्स पे लिख लें, आजकल तो इस पे QR कोड्स हैं, यहाँ आपको QR कोड दिखा देते हैं आज की स्क्रीन पे। सिर्फ अपना कैमरा उसके सामने करिए और आप इस चैनल पे जाएंगे। ये QR कोड लिस्टों को डाल दीजिए, अपने YouTube चैनल पे वो QR कोड डाल दें, शायद किसी का रास्ता खुल जाए। आपने देखा कि कार्ड जब डाल दिया जाता है ना किसी भी अकाउंट में, तो शॉपिंग करना बड़ी आसान होती है क्योंकि बार बार गिन गिन के निकालना मुश्किल होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें गलबा इस्लाम में अगर काम आ जाएं, हमें और क्या चाहिए। तो अपने काम करके अल्लाह के लिए इखलास के साथ, फिर उनको बड़ा खूबसूरत रैप करके अल्लाह के हवाले कर दिया करें। अल्लाह जिधर मर्जी डिलीवर कर दे, जिसकी हिदायत का जरिया में बना दे, हमें कोई केयर नहीं, हमें कोई कुछ ना बताए, हमें कोई कुछ ना पूछे, हमारा कोई नाम ना हो, हम इस पे बल्कि ज्यादा खुश हैं। हाँ, तेरा नाम हो, तेरी चीज हो, हमारे बाद से काम चलते जाए, फिर बात बनेगी। अल्लाह ताला हम सब को ज़ाया होने वाली नेकियों से बचाए। आगे है आयत नंबर 34। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے۔ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانی اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حاصل ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ یہ ہے جی وہ خیانت کار لیڈر، بڑے کیئر ٹیکر، جو لوگوں سے مال لیتے ہیں دین کے نام پہ اور استعمال کرتے ہیں اپنے للہ تللوں میں، اپنے اوپر خرچے۔ آپ حیران ہوں گے، کئی جگہ ایسی بھی ڈونیشنز جاتی ہیں کہ جس ڈونیشن کا ایک بڑا حصہ صرف اس کو مینج کرنے والوں پہ لگ جاتا ہے۔ بڑی بڑی کمپنی ہے، ماشاء اللہ ریڈ کراس کا نام آپ نے سنا ہوگا، خدمت اور بھی کئی نام ہے، میں زیادہ نہیں جانتی، لیکن کچھ چیزیں بہت اچھے ادارے ہیں، بلکہ ایک نام اور بھی یاد آ رہا ہے، اسلامک ریلیف۔ اب یہ سارا سیٹ اپ کہاں سے چل رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کے پاس پیڈ ورکرز ہیں، اور وہ ان کے پیسے کو مینج بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی تنخواہیں اور ان کے خرچے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم پہ کسی کی کوئی پے نہیں ہے، کسی کا کوئی خرچہ نہیں ہے۔ جو کوئی دیتا لیتا ہے نا، وہ سیدھا ادھر ہی جاتا ہے، اسی کی فلرشمنٹ میں جاتا ہے۔ نہ ہونے کے برابر جو چھوٹی موٹی فیس یہ لوگ غالباً لیتے ہیں کورسز میں، وہ تو صرف کہنا چاہیے کہ پینٹ منی ہے۔ جو ایک روپیہ بھی بچتا ہے وہ آپ کے پروجیکٹ پہ جاتا ہے، اسی سے تو پروجیکٹ چلتے ہیں اور اسی سے یہ چیزیں جاتی ہیں۔ تو یہ آئے جو نا، یہ اپنے لیے باندھ لیں، اگر آپ کہیں بھی دین کا کوئی کام کر رہے ہیں، جان پہ بن جاتی ہے جب کسی چیز کا کوئی آپ کو ذمہ دار بنا دے کہ یہ لے لو، آپ کا دیا ہوا تھوڑا بہت جو چھوٹا بڑا سونا چاندی ہے، اس کو اس طریقے سے ڈسپوز کیا جاتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں، کیسے کوئی اپنے پیسے کو نہ لگائے، ایسے سونے کو نہ کرے، ایک ایک روپے، ایک ایک چونی کے ریٹ کو نظر میں رکھ کے آپ کی کرنسی تھوڑی بہت جو ہوتی ہے چینج کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ کل اللہ کو جواب دینا ہے، آپ کو تو نہیں پتا چلے گا، لیکن جو ساتھی ہیں اس پہ الحمدللہ پوری نظر رکھ کے یہ کام کرتے ہیں اور ان کی پوری رپورٹ لی جاتی ہے۔ کیونکہ آج بہتر ہے کہ ہم دنیا میں اپنے اوپر نظر رکھ لیں، اس کی بجائے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ پکڑ لائے۔ اور آپ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں رسوا ہونے سے بچا دینا۔ اس میں بھی دیکھیں گنتی ہے۔ آج فرسٹ ٹائم شاید آپ کو اور مجھے بھی پارا 10 پڑھاتے ہوئے احساس ہوا ہوگا کہ اس میں اتنا ہیڈ کاؤنٹ ہے، کیونکہ اس سال کے تھیم میں ہم نے اس کو لے لیا۔ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا، اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے۔ اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت اور ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ساتھ عطا فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کی توفیق عطا فرما دے۔ تدبر اور عمل کی باتیں، حرام ذریعہ آمدنی کو چھوڑ دینا بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی شکل ہے۔ ذمیوں اور دیگر کافروں کے ساتھ معاملات کے احکام کو سیکھنا، اپنے مال کی زکات دیں اور نفل صدقات اور خیرات بھی کرتے رہیں، یعنی صرف 2.5% نہیں، 2.5% نہیں، 97.5 میں سے بھی تو کبھی کچھ دیا کریں۔ قرآن سے رہنمائی، اللہ کی نافرمانی میں کسی عالم کی فرما برداری نہیں کرنی، چاہے نام کے ساتھ کتنے بھی سابقے لاحقے لگے ہوں۔ یقیناً ایک وقت آئے گا جب روئے زمین پر صرف اسلام ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ وقت دکھائے اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے، وہ مال کل قیامت کے دن جہنم کے عذاب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بچا دے۔ غور و فکر کی باتیں، اللہ تعالیٰ دنیا سب کو دیتا ہے، لیکن دین صرف اسی کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ کفار کی طرف سے جزیہ دینے میں اسلام کی عزت اور ان کی ذلت ہے۔ محبوب چیز کی محبت اللہ کی اطاعت سے آگے بڑھ جائے تو وہ عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ کا ساتھ تقوی اور نیکی سے ملتا ہے۔ اللہ ہمیں متقی بھی بنا دے اور نیک بھی بنا دے۔ आगे एक और बिदत है मुशरिकीन मक्का की, आयत 37, इन्नमा नसीउ ज़ियादतुम फिल कुफर। महीनों को आगे पीछे करके अपनी मर्जी के मौसम में हज ले आते थे ताकि सर्दी में आए और हमारी तिजारत चलती रहे, सीजन लग जाए। अल्लाह ताला ने उस चीज को खोल के रख दिया। महीनों का आगे पीछे कर देना कुफर की ज्यादती है, इससे वो लोग गुमराही में डाले जाते हैं जो काफिर हैं। एक साल तो इसे हलाल कर लेते हैं और एक साल इसी को हुरमत वाला कर लेते हैं कि अल्लाह ने जो हुरमत रखी है इसके शुमार में तो मुवाफकत कर ले, फिर इसे हलाल बना ले जिसे अल्लाह ने हराम किया है। इन्हें इनके बुरे काम भले दिखा दिए गए और कौम काफिर की अल्लाह रहनुमाई नहीं फरमाता। जैसे ऐसे ही कि कोई कई दफा जनवरी के बाद फेबररी नहीं मार्च आ गया, और जब मार्च आए तो कह दे ये फेबररी हो गए, तो अल्लाह तआला को ऐसी बातें पसंद नहीं है। आगे है जी वो हिस्सा जिसका इंतजार था। बदर से बात शुरू हुई पारे के शुरू में, अब पारा तकमील की तरफ जाएगा और यहाँ से तबुक का सफर है। खड़ी फसलें हैं, पूरे साल का सीजन लगा हुआ है और एक कॉल आ गई कि आओ जरा तुम अल्लाह के रास्ते में निकलो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम उन्फिरू फ़ी सबीलिल्लाही साक़लतुम इलल अर्ज़ अरदीतुम बिल हयात दुनिया मिनल आखिरा। चलो कोई बात नहीं, फमा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलील। ऐ ईमान वालो, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे कहा जाता है कि चलो अल्लाह के रास्ते में कूच करो तो तुम जमीन से लगे रहते हो, अखलद ललर्द हो गए, अपने घर कोठियां बंगले तिजारतों में खोए रहते हो। क्या तुम आखिरत की बस दुनिया की जिंदगानी पर ही गए हो? दुनिया नजर आती है इसलिए, आखिरत छुपी भी है इसलिए। सुनो, दुनिया की जिंदगी तो आखिरत के मुकाबले में कुछ यूं ही सी है, मच्छर का पर। कोई कह दे मच्छरों के परों पे सेल लगी है तो भाग जाएंगे लेने के लिए? इस तरह हम दुनिया के पीछे भागते हैं। और आगे थोड़ी सी धमकी, 39, इल्ला तनफिरु युअज्जिबकुम अज़ाबन अलीमा। अगर तुमने कुछ ना किया तो तुम्हें अल्लाह ताला दर्दनाक सजा देगा और तुम्हारे सिवा औरों को बदल लाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो याद रखो, वला तदुर्रुहु शैया, तुम उसका कोई नुकसान नहीं कर सकते और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। और अगर तुम्हारे दिल में हल्का सा ख्याल आ गया ना, अच्छा देखा ना मेरी जरूरत पड़ गई है ना, मैं ना करूंगी तो ये होगा, तो फिर कान खोल कर सुन लो आयत 40, इल्ला तंसुरुहु फकद नसरहुल्लाह। ये है जी रसूल, प्यारे रसूल सिराज मनीरा। जरा से इस आयत को पढ़ते वक्त नबी सल्लम और अबू बकर सिद्दीक को देखिए और दिल में दुआ करें कि अल्लाह हमें रिसालत के तो नहीं सिद्दीकियत के मुकाम पे फाइज कर दे। अगर तुम इनकी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना करो तो अल्लाह ही ने इनकी मदद की उस वक्त जबकि इन्हें काफिरों ने देश से निकाल दिया था, दो में से दूसरा जबकि वो दोनों गार में थे, जब ये अपने साथी से कह रहे थे कि गम ना कर अल्लाह हमारे साथ है। बस जनाबे बारी ताला ने अपनी तरफ से तस्कीन इस पर नाजिल फरमा कर इन लश्करों से इनकी मदद की जिन्हें तुमने देखा ही नहीं, इसने काफिरों की बात पस्त कर दी। और बुलंद व अजीज तो अल्लाह ताला का कलिमा ही है। यह है गलबा इस्लाम, पारे का थीम। अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। अब बंदा सोच में पड़ जाता है, ये क्या हो गया? प्यारे नबी ने तो अपनी जान हथेली पर रख कर हिजरत की, हम कहाँ पड़े हैं? आज आप और मैं तो तकाबुल भी नहीं कर सकते उस दौर के तकाजे। मुकामे सिद्दीकियत को देखिए, खुशी से अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आ गए कि अल्लाह के नबी के साथ मैं जाऊंगा। उनको अपनी जान क्यों नहीं प्यारी थी? क्या उनको अपने माल की फिक्र नहीं थी? सोना चांदी घरों में रखा होता था, साथ लेके निकल पड़े कि आगे जाएंगे पता नहीं क्या हालात मिलेंगे, क्या करेंगे, इस्लाम के साथ क्या होंगे। और बूढ़े बाप नाबीना को थैले में पत्थर भर के दे आए कि वो खुश रहे कि चलो सोना छोड़ गया, बेटा ही गया। ये वाकत सुनिए, पढ़िए, इन आयतों की तफसीर सुन लीजिए, खून गर्म हो जाता है। लेकिन हमारा हाल क्या है? हमें अपनी फिक्रें पड़ती हैं, मजबूरियां बड़ी, हालात नहीं अच्छे, अभी बच्चे छोटे, अभी बच्चे बड़े, अभी शादी होनी, अभी ये, अब वो। कारे जहां दराज से अब मेरा इंतजार कर।